क्या हुआ मनु चहर? किस तरफ से जाना होगा?
नहीं पता, शायद गलत रास्ते से आए हैं।
असद?
हाँ।
ये कह रहा है कि शायद गलत रास्ते से आए हैं।
बकवास कर रहे हैं, रास्ता यही है।
तुम्हें कैसे पता?
मेरे बाबा ने डायरी में लिखा था कि कोहे यलान में ऐसी बहुत सी संगलाख चट्टाने मिलेंगी। लिखा था उनसे गुजरने के बाद दूर से किला नजर आएगा जो बहुत ऊंचा होगा, बिल्कुल दमावंत पहाड़ की तरह। कोहे यलान भी वहीं पर है।
सच कह रहे हो?
हाँ।
यानी कि बाकी रास्ता तुम खुद ढूंढ सकते हो?
लगता है ढूंढ लूंगा।
तो फिर तीन के जाने की जरूरत नहीं है।
अमाद, इस वक्त हम बीच शहर में हैं।
जहां भी हो फर्क नहीं पड़ता,
किसी मुनासिब जगह पहुंचने दो।
अगर मुनासिब जगह पहुंच गया तो हमारे लिए मसला खड़ा कर देगा।
जी हाँ, मुनासिब जगह यही है।
इमाद, मुझे लगता है कि इस तरफ से है।
क्या?
मेरे ख्याल से इस तरफ है।
हाँ,
रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूं।
वापस आएंगे। वापस आएंगे। खुदा हाफिज।
असद, असद,
जब मैं हाथ धो रहा था तब तुम अकेले वापस जा सकते थे।
क्या मुझे जाना चाहिए था?
तुम्हारी जगह मैं या मनु चहर होते, एड्रेस का पता होता तो हम लोग चले जाते।
तुम मनु चहर से अलग हो।
इतना भी नहीं कि तुम मुझे धोखा दे सको। दोस्ती की भी बातें मत करो क्योंकि तुम दोस्त हो नहीं। यहाँ सिर्फ दो तरह के ही लोग हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो जंग पर मारे जा रहे हैं और कुछ लोग हम जैसे हैं। मैं, तुम और मनु चहर दूसरे लोगों में से हैं। तुम्हें चले जाना चाहिए था। क्या हुआ, बुरा लग गया?
यहीं पास में एक अलग किस्म की पहाड़ी है जिसका नाम कोहलान है। उस पर चढ़ जाओ, उसकी चोटी पर एक किला वाकई है जिसमें एक सदाबहार दरख्त है। दरख्त के नीचे खोदोगे तो तुम खजाने तक पहुंच जाओगे। बैठे क्यों हो? जाओ ना, बाइक भी स्टार्ट है, पता भी जानते हो। जाओ, मनु शहर होता तो चला जाता।
माचिस है।
लोगों की सिर्फ दो किस्में नहीं है मेरे भाई। अपने आप को इतना बुरा आदमी साबित करने की कोशिश मत करो।
जगह कहां से मिलती जुलती है?
कहां से?
लगता है दुनिया का आखिरी हिस्सा है।
हाँ? बाबा ने अपनी डायरी में लिखा था कि कोहिलान के दामन में कदीमी पत्थर मिलेंगे।
अरे वाह, लगता है कि सही जगह पहुंचे। ये पत्थर खुद भी बड़े कीमती हैं। खजाना मिलने के बाद इनको भी ट्रक में लोड करके ले जाएंगे। असगर के गैराज में मेरा एक दोस्त है जो इन्हें बेच देगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पहाड़ की चोटी पर कोई किला होगा।
अगर यहां से नजर आता तो हमसे पहले लाखों लोग वहां पहुंच जाते।
पते की बात की,
चोटी का रास्ता दुश्वार गुजार है, इसीलिए आज तक कोई भी किले तक नहीं पहुंच सका।
शायद हम भी ना जा सके।
अगर ना पहुंचना होता तो यहां तक भी ना आ सकते।
रूहानी बातें मत करो यार, अभी चलते हैं तो रात के अंधेरे में गुम हो जाएंगे। आग जलाकर सुबह का यही इंतजार करते हैं।
ठीक है,
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां पर कोई किला विला होगा। इस पहाड़ को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता।
मैं जाके बाइक लाता हूं।
किसको फोन कर रहे हो?
तुम्हें घर क्यों नहीं गए?
नहीं चाहता था कि मर्जिया खानम पर नजर पड़े, तकलीफ होती है। क्या काम है?
अंदाजा लगाओ।
आधी रात को क्या अंदाजा लगाऊं मैं?
हाँ, ढूंढ लिया। ये देखो, असद और इमाद हैं।
मजाक कर रहे हो क्या?
ये दोनों महाज जंग पर गए हैं। यहाँ भी कमेटी ने उनकी ताईद कर दी है। अभी दो तीन दिन हो रहे हैं कि इनका प्लाक भी जारी कर दिया गया और उसको बेसत नामी बेस पर भेज भी दिया गया।
ये है कहाँ पे?
ये पावे के अतराफ में है।
तुम तो मनु चहर के सिलसिले में तहकीकात करने गए थे, ये सब कहाँ से मालूम हुआ?
मैं वहाँ मनु चहर के सिलसिले में तहकीकात करने गया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा वो शायद महाज पर चला गया हो, असद और इमाद को ढूंढने के लिए। मैंने फिर पेपर को खंगालना शुरू किया और फिर मुझे कामयाबी मिल गई।
फौरन वायरलेस पे इत्तला दो कि आज रात ही उनको हिरासत में लेकर सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए तेहरान भेज दिया जाए। जल्दी करो।
नहीं है वो।
क्या मतलब नहीं है?
उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है जहां बहुत तेज जंग चल रही है और उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये महाज पर दुश्मन से जंग करने चले गए।
यकीन करोगे तो बेवकूफ कहलाओगे।
तो फिर अब वो फ्रंट पर जाकर क्या कर रहे हैं?
कल जानकर बता दूंगा।
तुम कैसे जानोगे?
जाके उनको ढूंढ निकालूंगा और पूछूंगा, वो खुद बताएंगे, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि उन्होंने क्या बताया।
तगड़े और चुस्त बंदे का दो दिन का पैदल का रास्ता था।
अगर तुम भी इतने साल खजाने के मुंतजर रहोगे तो मेरी तरह चुस्त और चालाक हो जाओगे। तुमने बहुत बेवकूफी की बच्चे, मुझे कमतर समझा तुमने, धोखा खा गए। वो पानी की बोतल इधर दो। मैंने कहा इधर दो बोतल। अपने दोस्त को जगाओ, जगाओ अपने दोस्त को।
अहमद, अहमद, अहमद,
सोने दो आजाद।
अहमद भाई, अहमद,
सकता है क्या?
जो लात तुमने खाई मैंने मारी थी।
लो
बेवकूफ, हिलोगे तो भून कर रख दूंगा।
ये मुंह और मसूर की दाल,
जान अजीज है तो आजमा लो। सर आगे आकर तो दिखाओ।
बैठ जाओ अहमद, ये जानवर कुछ भी कर सकता है।
डींगे मार रहे हो। मनु चेहर आना नहीं चाहिए था, आए तो गलती की। तुम जिंदा बचकर नहीं जाओगे।
बैठो तो बताता हूं।
अगर गोली मेरी टांग में लग जाती तो हैवान कहीं के।
ये कदम और बढ़ाया तो सीधे तुम्हारे टांग में गोली लगेगी, पर अगली गोली तुम्हारे सीने में घुस जाएगी। बैठ जाओ।
मैंने कहा बैठ जाओ।
क्या करना चाहते हो तुम?
हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। मुझे भूख लगी है, और जब भूख लगी हो तो कुछ भी कर सकता हूँ।
जल्दी करो।
लोबिया खाओगे या मछली खाओगे?
लोबिया।
ओपनर साथ नहीं लाए? खाने के बाद क्या, इसके बाद क्या प्रोग्राम है?
मैं अपना खजाना ढूंढने जा रहा हूँ।
वो आपका खजाना नहीं है?
तो ठीक है, तुम्हारे खजाने के लिए जाऊंगा।
पता कहाँ से लाओगे?
तुम दोगे ना?
इतने यकीन से कैसे कह सकते हो?
तुम्हें बताना ही पड़ेगा वरना जिंदा नहीं बचोगे। बताने का वक्त है, मैं सुन रहा हूं। तो क्या नहीं बताओगे?
फर्ज करो बता भी दिया तो तुम जैसा बूढ़ा आदमी अकेले उस पति तक कैसे जा सकता है? फर्ज करो कि पहुंच भी गए तो फिर अकेले खजाना उठाकर लाओगे कैसे, और कैसे मां से जंग से गुजार कर उसे तहरान तक ले जाओगे?
तुम मेरी फिक्र मत करो, कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा।
रास्ता तो यही है कि हम अपनी पिछली बात पर वापस आ जाएं। एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा अजत का और एक हिस्सा तुम्हारा।
हर काम की इब्तिदा में ऐसा ही होता है, वरना हर अकलमंद इंसान जानता है कि खजाने में किसी को पार्टनर नहीं बनाया जाता। जमीन के अंदर गड़े हुए खजाने की लालच ऐसी होती है कि उसमें किसी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता।
देखो मेरे भाई, अगर तुम कल की बात को लेकर के हमने तुमको चकमा दे दिया, तुम हमसे नाराज हो तो हम तुमसे माफी मांगते हैं। लेकिन अगर तुम डरते हो कि तुम हमारे साथ आओगे हम तुम्हें चकमा देकर भाग जाएंगे तो मैं जमानत देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। हंस रहे हो तुम? इस बंदूक की वजह से ज्यादा मत इतराओ, हर हाल में तुम हमारे मोहताज हो।
ये कैसी बातें कर रहे हैं अहमद? मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने अजदाद के खजाने तक इस बेगैरत का हाथ नहीं पहुंचने दूंगा। इनकी बंदूक से मत डरो भाई, खजाने की निशानी सिर्फ मुझे मालूम है और मैं मर के भी नहीं बताऊंगा इसको।
बताओगे तुम?
सच कह रहे हो? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे?
तुम्हारे दोस्त की खोपड़ी में सुराख कर दूंगा।
सुराख कर दिया और तब भी ना बताया? तो
नहीं बताया तो पहले दाएं पैर में गोली मारूंगा, फिर बाएं पैर में गोली मारूंगा, फिर भी नहीं बताया तो हाथ पर मार दूंगा और बाकी बची सारी गोलियां पूरे जिस्म में उतार दूंगा। तब तक गोलियां चलाता रहूंगा जब तक मुंह नहीं खोलोगे।
ये तो तुम्हारी पहली गोली पर गिरकर बेहोश हो जाएगा।
सारी उम्र सब्र करने से जाहिर है कि मैं कितना साबिर हूं, होश में आने तक सब्र कर लूंगा।
तुमने जिद पकड़ ली है, छोड़ने वाले नहीं हो मेरे भाई। ऐसा रास्ता ढूंढो जो फायदेमंद हो।
सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम लोगों से पता लूं और जाने से पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं। जितना ज्यादा मेरा वक्त बर्बाद करोगे उतना ही बुरा सलूक करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर जल्दी बताओगे तो सिर्फ इतना मारूंगा कि मेरे पीछे ना आ सको। अब बको असद,
मारो गोली। अभी से इंसान किस लिए मारा इसको?
जल्दी बैठ जाओ।
अब मैं इस बयाबान में इसका क्या करूं खबीस आदमी?
अब जल्दी से खजाने का पता बता दो वरना दूसरी गोली इसके पैर में मारूंगा। एक, दो, अगर हर धर्मी दिखाओगे तो इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। बदल दिया अपना फैसला या अभी जिद पर हो।
मेरे बाबा और सलमताबाद के सारे मर्दों ने इस खजाने की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मर्द नहीं हूंगा अगर इनके रास्ते पर ना चला। चला गोली।
एक किला है।
विश्वास मत करो अहमद।
जमीन पर बैठो तुम। अहमद तुमने क्या कहा?
कोहे आलान में एक किला है।
अहमद कसम से अगर बता दिए तो हमारी हालत इससे बेहतर नहीं होगी। ये बेगैरत ऊपर जाने से पहले हम दोनों को खत्म कर देगा।
तुम मुंह बंद करो, उसकी बात सुनने दो। क्या बोल रहे थे? जल्दी,
एक किला है।
एक किला? किले में किससे रहा है खजाना? बोलो जल्दी बताओ। एमाद फिर से बोलो, खजाना कहाँ है? किले में किस तरफ है? फिर से बताओ, फिर से बताओ।
बेहोश हो रहा है? मैं भी नामुमकिन है कि बताऊं। तुम्हारा काम तमाम मनु चहल।
तुम चुप करो। अहमद बोलो, खजाना किस हिस्से में है? कहां पर है? बताओ इमाद। अहमद
आजाद, छोड़ दे इसको बेगैरत।
आजाद, आजाद,
मैं कहता हूँ छोड़ दे इसको खबीस।
गोली चला आजाद, गोली। ये ले खजाना, ले खजाना, और ले खजाना।
ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है।
हाँ,
उफ़, कितना खून बह रहा है।
लाओ, क्या कर रहे हो?
लाओ मैं बांधता हूँ। लाओ हाथ हटाओ।
गोली छू के निकल गई, घाव गहरा नहीं है।
अच्छा, घुसी नहीं है?
नहीं, ये छोटा है। ऊपर क्यों बांधा?
ऊपर ठीक है, इस तरह ठीक है। और यार तुमने इसको खूब उल्लू बनाया। मैं भी जो तुम्हें अपने हाथ की लकीरों से ज्यादा जानता हूँ धोखा खा गया। बस काश के इसे सही पता न बताते।
अगर मैं गलत पता बताता तो तुम हड़बड़ाते नहीं और वो हमारी चाल समझ जाता, आगे नहीं आता और मार नहीं खाता। समझ गया ना बेवकूफ?
आफरीन। मैं जाके बाइक लाता हूँ।
नहीं, जरूरत नहीं है, हम सीधे खजाने की तरफ जाएंगे।
तुम इस जख्मी हालत में कहीं जाने के काबिल नहीं हो।
कुछ नहीं है, कहना गोली छू के निकल गई, जम जाने पर खून बंद हो जाएगा।
अहमद, क्या करूं, मैं अपनी जिद पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे यकीन नहीं था ये गोली मार देगा।
अच्छा किया भाई, अच्छा किया।
बस उनसे माफ कर दे अहमद।
अब ज्यादा ट्रेजेडी मत बनाओ, मुझे पानी पीने को दो।
ठीक है। हबीस का बच्चा एक बोतल पानी पी गया।
शुक्रिया, उठो से एक लात मार के आओ। जाके उसे लात मारो, अपने दिल की भड़ास निकालो।
मार दूं?
हाँ, उठो ना,
ये पकड़ो,
जोर से मारना। और मारो, जोर से मारो, जोर से। ये लो
भाई, एक मिनट से पकड़ो, एक और मारता हूं।
क्या? जाओ अपनी भड़ास निकाल लो, मार।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
एक कोट भी रख दीजिए, मैं डरता हूँ कि रातों को सर्दी ना लगे।
मेरा ध्यान है इस बात पर। ये तुम्हारे बाबा की अंगूठी है, तबरुक है, पहनो इसे। अगर तुम असद को पकड़ने जाओगे तो नामुमकिन है ये लड़की तुम्हें हाँ में जवाब दे।
जाऊं या न जाऊं इसका जवाब मनफी है।
तो जब तक तुम वापस आओगे तब तक तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा?
मैं आप पर कुर्बान, अपना ख्याल रखिएगा।
ध्यान किधर है मर्सिया? तुमने सुई तोड़ डाली।
माफ कीजिएगा पहले जी मोहतरमा, मेरा जहन कहीं और लगा हुआ था।
थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही है। दो दिन से तुम पर नजर रखे हुए, आधे घंटे के लिए भी मुफीद काम नहीं किया है। ये बताओ छुट्टी दे दूं तुम्हें, घर जाओगी?
नहीं, ठीक हो जाऊंगी।
तुम असद के लिए फिक्रमंद हो।
मनुचेर, हमारी बाइक का ख्याल रखना जब तक हम वापस आएं।
अगर तुम हमारे वापस आने तक जिंदा रहे तो मैं खुद ही आकर तुम्हारी खोपड़ी में एक गोली उतार दूंगा, ताकि हाथ से गए खजाने की तुम दोबारा फिक्र ना कर सको।
खून बहना बंद हो गया?
हाँ लगता है।
दर्द हो रहा है?
जल रहा है।
चूंकि गोली रगड़ कर गुजर गई है इसलिए। क्या हुआ, रुक क्यों गए?
तुम कुछ नहीं सुन रहे?
मसलन क्या?
हाँ नहीं मालूम, लगता है मेरा बहम है। चले।
तुमने भी खूब उसे ठिकाने लगा दिया। गाड़ी की आवाज है ना?
जल्दी करो असद, जल्दी करो।
इस मनुचेर की किस्मत बहुत अच्छी है। जल्दी करो अहमद, ये मुझे दो। जाओ ऊपर।
तुम अपना हाथ मुझे दो।
आ रहा हूं।
तुम अपना हाथ मुझे दो।
तुम चलो, मैं आ रहा हूं। ये लोग कौन है?
लगता है ये सर्च ऑपरेशन के हैं, इलाके की शिनाख्त के लिए आए हैं।
ढूंढ निकालो तो हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा।
तुम किस बेस से आए हो?
बेसत कैंप से हूँ, मैंने उन्हें गुम कर दिया।
सिविल ड्रेस पे क्यों हो?
नहीं है ना, लंबी कहानी है।
उन्हें कैसे गुम कर दिया?
अब मैं क्या बताऊँ, अचानक मुतवज्जे हुआ कि मैं गुम हो गया हूँ। मैंने सोचा इस तरफ से आऊंगा तो मेरे साथी मिल जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से इराकियों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने भी मेरी खूब पिटाई की और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस तरफ चले गए ताकि अपने साथियों से मिल सके।
सिर्फ पिटाई की?
हाँ, अलबत्ता उनमें से एक सिपाही ने मेरी कनपटी पर बंदूक रख के मुझे गोली मारनी चाहिए, लेकिन उसके कमांडर को मुझ पर रहम आ गया। मुझे लगता है मेरी उम्र का लिहाज किया।
ये बाइक तुम्हारी है?
कौन सी?
हाँ। इसे छुपा क्यों रखा है?
इराकियों ने छुपाई है।
उन्होंने? किस लिए?
उन्होंने वहाँ छुपा दी, मुझे क्या पता। मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ?
अमीर साहब, हमें वापस चलना होगा।
क्यों?
इराकी फौजी हमारे सिपाहियों को पीछे से घेरना चाहते हैं। अगर हम देर में यहाँ से निकलेंगे तो इराकी हमसे आगे निकल जाएंगे।
उठो मेरे भाई, चलो यहाँ से।
अब मेरा क्या होगा बेटे?
तुम्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले कर देंगे।
ऑपरेशन इंटेलिजेंस?
उठो, चलो जल्दी।
बगैर बाइक के इतना रास्ता कैसे तय करेंगे, और वो भी इतने खजाने के साथ? उठो चले।
कहाँ चले?
खजाने की तलाश में ना।
तो फिर चलो। कोई हुक्म मेरे लिए?
क्या असद की तलाश में जा रहे हो? शर्मिंदगी महसूस ना करो। जिद और हठधर्मी की वजह से तो जा नहीं रहे हो, अपनी जिम्मेदारी की वजह से जा रहे हो।
क्या कहूं आंटी, एक तरफ मजबूर हूं असद को वापस जेल ले आऊं, दूसरी तरफ यह भी जानता हूं कि आपने असद को बिला वजह इस काम के पीछे नहीं भेजा होगा जो मुझे नहीं बताना चाहती। बहुत परेशान हूँ आंटी।
अरे परेशानी किस बात की, तुम अपनी ड्यूटी को अंजाम दो। खुदा ने चाहा तो असद भी अपने फर्ज को अंजाम देगा।
वहाँ पहुँचूंगा तो उसे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलेगी।
अब तक भी तो उसे फुर्सत नहीं मिली, लेकिन उसका काम आगे बढ़ता रहा।
जा रहा हूँ।
देखो, या तो इंसान को किसी चीज का इरादा नहीं करना चाहिए, और अगर कर लिया तो फिर पूरी ताकत से उस पर अमल करना चाहिए।
जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। पकड़ के ले आऊंगा मैं।
बड़ी बहन का मतलब मर्सिया है, तुम समझते क्यों नहीं?
कदम पड़ते ही महाज जंग की हालत और बिगड़ गई है। दुश्मन ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहां से खबर आ रही है कि हमारे एक तो उनके 10 फौजी हैं। कहते हैं जमीन और आसमान से घमासान की जंग जारी है। यहां से भी फौजियों को बड़ी तादाद में गाड़ियों और हवाई जहाज से भेजा जा रहा है। तुम्हें भी हवाई जहाज से वहां भेजा जा रहा है। मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम्हें सीधे बेसद बेस भेज दिया जाएगा। ये तुम्हारा ऑफिशियल लेटर है, इसकी वजह से वो तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हैं, और अगर आदमी की जरूरत पड़ी तो वो भी तुम्हें फराहम करेंगे। कहां खोए हो तुम? लो अपनी ड्यूटी का ऑर्डर। जिस फ्लाइट से तुम जा रहे हो वो 3:30 बजे एयरपोर्ट से निकल जाएगी।
टाइम क्या हो रहा है
अभी? 1:10।
वापस मोड़ो मुनीरिया स्क्वायर चलते हैं।
वहां किस लिए जा रहे हो?
अभी बहुत जल्दी है, वापस मुड़ो, किसी और जगह काम है। अरे मोड़ो ना।
लड़कियों जरा आराम से। ज्यादा फिक्र मत करो, या खुद आएगा या उसका खत आएगा। मैं सच कह रही हूँ।
पिलाची साहिबा, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी।
हाँ मर्जिया, तुमने कहा और मैं मान लूंगी। उठो, दरवाजे तक जाओ।
किस लिए?
उसे खत लिखने का टाइम नहीं मिला, खुद ही दरवाजे तक आ गया।
कौन?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हम तो बात कर चुके हैं, फिर आप यहाँ पे किस लिए आए हैं?
उस मोहब्बत की खातिर आया जो आपने कहा हमारे बीच नहीं है। गुस्ताखी माफ, लेकिन मोहब्बत सिर्फ बात की हद तक नहीं होती।
बहरहाल मोहब्बत को दो तरफा होना चाहिए, ना कि एक तरफा।
दो तरफा है, यहाँ तक कि अगर आप जबान से इनकार करें तो भी।
किसने कहा कि दो तरफा है?
साफ जाहिर है।
धोखे में मत आइए जाबिर साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
मेरी ड्यूटी सख्त चीजों को समझना है मर्जिया साहिबा। आपका मसला ये नहीं है कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती, आप मेरे और असद के बीच मुतरद्दिद हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि किस तरफ जाना चाहिए।
कोई रब्त नहीं।
रब्त नहीं है तो क्यों उठकर दरवाजे तक आई हैं? कहलवा देती हैं कि मैं मौजूद नहीं हूं।
कहां से जानते हैं कि नहीं कहलवाया?
मैंने कहा ना, मैं इन बातों को खूब समझता हूँ।
देखिए जाबिर साहब, मैं आपको अपनी बात साफ साफ बता देती हूँ। आप एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी शान भी बचाना चाहते हैं और अपने मकसद तक भी पहुँचना चाहते हैं। आपके ख्याल में मैं भी असद की तरह एक मुजरिम हूँ जिसे आप अपने चालों से पकड़ना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त भी बजाय इसके कि आप मेरे सामने गिड़गिड़ाएं और मुझ पर साबित करें कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, आकर काबिलियत झाड़ रहे हैं। आपका यही रवैया इंसान को बेजार कर देता है, समझे? मुझे क्या कि आपका काम मुश्किल केसेस को समझना है या आसान केसेस को? बार बार मुझ पर अपनी काबिलियत क्यों जता रहे हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जिनकी अक्ल उनकी आंखों में होती है? उन लड़कियों में से जो ये भी नहीं देखती कि लड़के ने डिप्लोमा किया हुआ है या सरकारी नौकर है और लुढ़क कर उनसे शादी कर लेती है? जी नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। आखिर आप कैसे मुश्किल बातों को समझ सकते हैं, हालांकि आपको ये भी नहीं मालूम कि आशिकी के आदाब क्या है? खुद को धोखा ना दे सुरागरसा साहब, आप अपने ड्यूटी और खुद के दरमियान फंस कर रह गए हैं। लोगों ने आपकी इतनी तारीफें कर दी कि आप पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे। इसीलिए चाहते हैं कि आप हर चीज को बड़ी आसानी से हासिल कर लें। शायद ही मुमकिन हो, लेकिन मैं उनमें से हरगिज नहीं हूँ। आप गलत पते पे आए हैं। आप जाइए, मेरे बेचारे भाई को पकड़ लीजिए और उसकी जिंदगी तबाह कर दीजिए। अगर अगली बार मेरे सामने आए तो मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी।
सवार हो जाओ। तुमने अगर हमसे कोई राय बात की होती तो इस मुसीबत में ना पड़ते। आओ सवार हो जाओ, चले।
هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرم